भगवान भगवद गीता के 40वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में बताए थे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञान धीरान्यस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुर्निधाय येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलं स्वयं रूपकदानं दासी स्वयंप्रदातिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवितोभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। तो भगवान बताए 18 अध्याय 40 श्लोक में, इस लोक में स्वर्ग लोक हो या देवताओं के मध्य में भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त ना हो, जो मुक्त हो। अभी हम चर्चा कर रहे थे, कई बार भक्त लोग ऐसा सोचने लगते हैं, अरे हमने तो दीक्षा ले लिया, हम तो भक्ति में आ गए, तब तो हम 3 गुणों से पार हो गए। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, केवल हमने तो एक ही गुण लिया था। वो जो श्लोक था उसमें अनेक गुण थे, बहुत सारे गुण थे उसमें। लेकिन आलस्य, दीर्घ सूत्री इत्यादि बहुत सारे गुण थे। हमने एक गुण लिया और उसमें भी हमारे डिवोटी को हम देख लिया कि हम सब में ये गुण है। सेम चीज़ आलस्य में भी ये गुण देखा जाता है, सब डिवोटीज में आलस्य भी होता है। ये हुई तमोगुण की बात। फिर अगर रजोगुण को देखो तो रजोगुण में भी जो पैसा ना, बस कुछ ये करना है, मैं वो करके रहूँगा, बिना कुछ सोचे समझे लग जाता है उसके पीछे। भक्त चाहे भक्ति क्यों ना हो, पैशनेट होना किसी भी चीज़ के लिए वो रजोगुण का। कृष्ण भक्ति के लिए भी पैशनेट होना अच्छा है, लेकिन उसका अप्रोच आचार्यों ने बताया वैसा होना चाहिए। लेकिन व्हेन यू आर नॉट अप्लाइंग इंटेलिजेंस, जस्ट मेकिंग एफर्ट्स, देन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस विल बी डिस्टर्बेंस फॉर यू। आपकी भक्ति आपको कष्ट देना शुरू करेगी। सो वॉट कृष्ण इज सेइंग हियर, भगवान इस श्लोक में समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, जिसमें जैसे हमने एक बार चर्चा किया था, मनुष्य को छोड़ दो, देवताओं में भी ये देखा जाता है ना। इंद्र मोहित हो गया अहल्या के ऊपर, तो वो रजोगुण का ही तो प्रभाव है। इंद्र ने अपने गुरु का वध कर दिया, वो तमोगुण का प्रभाव है, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। इस तरह से देवताओं में भी 3 गुण पाए जाते हैं। देवता उच्च प्रकार के देवता सबको तो छोड़ो, मनुष्य को छोड़ो, पशुओं में भी पाए जाते हैं, वो भी हमने आपको बताया था। गाय सत्वगुणी होती है, गाय आपकी बात समझेगी, अगर भैंस लोगी तो भैंस नहीं समझेगी आपकी बात। भैंस का बिहेवियर अलग होता है और कुत्ता उससे भी गाय गुजरा होता है, वो बिल्कुल तमोगुणी होता है। इसलिए हम लोग भैंस का दूध नहीं पीते, यही कारण है। तो बोलते हैं प्रभु इसमें क्या है, गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पियो, भैंस का तो और मीठा होता है, स्वाद में और अच्छा होता है भैंस का दूध, लेकिन भैंस का दूध पियेंगे तो फिर भैंस जैसा होगा बेचार। इसलिए हम लोग गाय का दूध पीते हैं, क्योंकि वही शास्त्र में बताया है गाय का ही दूध पीना चाहिए। पक्षियों में क्या बताया था हमने, आप बताइए। हंस, हंस सत्वगुणी होता है। देखा कभी हंस, देखा है कि कभी नहीं देखा, कहाँ देखा,
तालाब में।
अच्छा, गुजरात में देखा, बाहर देखा, और किसी ने देखा है उसको? जू में देखा है। अच्छा, और किसी ने देखा है? ब्रज में हंस को देखा कभी? वृंदावन में?
चिड़ियाखाना में देखा हूँ।
अच्छा, वृंदावन में यहाँ पर हंस पाए जाते थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, वहाँ पर थे ये केदारनाथ ब्रज में कामजावन के पास आदि बद्री है और केदार है, तो वहाँ पर एक सरोवर है, वहाँ पर हंस पाए जाते थे। मैं गया था तो दो हंस थे वहाँ, बड़े बड़े, देर वेरी बिग साइज। वो सतो हुआ तमोगुणी हुआ कौआ, और तमोगुणी होता है। तो इस तरह से हर एक चीज में देखो, पशु हो पक्षी हो, सब में तीन गुणों का डिवीजन मिलता है, सब में इस प्रकार के वृत्तियां मिलती है। अब मनुष्य समाज में इस प्रकार के गुणों का डिवीजन स्वाभाविक रूप से सबके भीतर होता ही है, तो इसमें चार वर्ण का जो डिवीजन है वो इसी आधार पर हुआ है, तीन गुणों के आधार पर चार वर्ण। तो अभी आगे वाले श्लोकों से कुछ श्लोकों तक हम ये वर्णाश्रम को समझेंगे। तो श्लोक नंबर 41 पढ़िए।
परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों का शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है।
यस, इन सब में जो भेद होता है वो उनके स्वभाव के आधार से होता है, उनके कार्यों के आधार से होता है, ना कि उनके जन्म के आधार से। पहले भगवान बता दिया एक जगह पर, चातुर्वर्णयमयाश्रेष्ठम गुणकर्मा विभाग, चार प्रकार के जो वर्णाश्रम है वो गुण और कर्म के आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। तो उनके स्वभाव अभी किस तरह से है ये आगे चारों वर्ण के विषय में भगवान बताते हैं। अभी जो श्लोक आएंगे उसमें ब्राह्मणत्व का क्षत्रिय का इन सबके गुण कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण है, कैसे समझना चाहिए कि ब्राह्मण है, कैसे समझना चाहिए कि क्षत्रिय है, वो सब बात भगवान आपके बताएंगे। पढ़िए नेक्स्ट।
शांत प्रियता, आम संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते
हैं। श्रमोदमस्तमश्चौचम शांतिर्आर्यवंगेवच ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभाव। ये जो भी भक्त ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उनको ये गुणों को पालन करना सीखना चाहिए। ये ब्राह्मण के कितने 8 हैं, राइट, 8 लक्षण हैं। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ज्ञान, 9 है ना, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिक धार्मिकता। ये 9 लक्षण ब्राह्मणत्व के पाए जाते हैं। तो एक गुण है, ये कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे गुण है अलग अलग प्रकार के, हम आपको एक एक करके संक्षिप्त में बताते हैं। एक जगह प्रभुपाद अहमदाबाद में लेक्चर दिया था 1972 में, तो प्रभुपाद बताए ब्राह्मण को 9 गुणों की आवश्यकता होती है, क्षत्रियों को 7 गुणों की आवश्यकता होती है, वैश्य को 3 गुणों की आवश्यकता होती है और शूद्र के लिए केवल 1। ये अलग अलग आने वाले श्लोकों में ये चीज बताई है। इसे समा, तो इंद्रियों को वश में लाना उसको क्षमा कहते हैं। अपनी इंद्रियों को ऐसे नहीं कि जो मन में आए जो करना है कर सकते हो, इंद्रियों को मन को भी वश में लाना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुरु को स्पेशली कहना पड़ता है कि मन को भी वश में लाया, कई बार स्पेशली बोलना पड़ता है गुरु को, क्योंकि मन इतना तेज गति से भागता है और फिर इंद्रियों को नचाता है। और फिर दमा शब्द का क्या अर्थ है? दमा शब्द का क्या अर्थ है? तो सही प्रभुपाद कहते हैं वही मन को होश में लाना। जब तक मन इंद्रियों का दास रहेगा उसको वो दास बोलते हैं, जब वो स्वामी बनता है तो उसको गोस्वामी कहते हैं। सो तप समा और दमा ये तपस्या के बिना नहीं हो सकता। समो दमा तपस्या और तपा प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए। वन ऑफ आवर गॉड ब्रदर्स वेंट टू प्रीच इन लंडन एंड लॉर्ड जेंटल वाज टॉकिंग विद हिम सेइंग गोस्वामी जी कैन यू मेक मी अ ब्राह्मिन। प्रभुपाद का एक गुरु भाई था, आवाज आ रही है इसको थोड़ा दूर कर दे क्या? ये ठीक है ज़्यादा? ये ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी हमें ब्राह्मिन बना दीजिए। तो गोस्वामी बोले कोई बात नहीं, चाची छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? पता है चारों नियम, जैसे ही बोला असंभव, ये हो ही नहीं सकता। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि इस पर क्या कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में अभी तो सिस्टम बदल गया, लेकिन जब मैं कृष्ण भक्ति में नया नया जुड़ा था और जब मुझे पता पड़ा चार नियम क्या है, तो बोले चार बस बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, चार नियम बस और कुछ नहीं। क्योंकि देखो नशा तो हम लोग करते नहीं, चाय कॉफ़ी कोई इतना बड़ा हमारा प्रॉब्लम नहीं था। चाय कॉफ़ी छोटा आसान काम है, छोड़ दिया। नशा तो करते नहीं कभी, मांसाहार तो कभी जिंदगी में छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया कभी। और जुआ, हम तो कभी जुआ आता ही नहीं खेलना, जुआ कैसे खेलते वही नहीं पता। और व्यभिचार, अभी विचार तो हमें पता ही नहीं, मैं तो छोटा था 12 साल का, अभी विचार क्या होता पता ही नहीं था। तो मैं तो इतना आसान है बस और कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप जाओ बताओ अमेरिका में बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी दिन की शुरुआत ही होती है नियम को भंग करने से। बिस्तर पर ही चाय शराब पीते सो उठते और मांसाहार वगैरह करते। तो ये तपस्या, ये बेसिक तपस्या है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक ब्राह्मण भक्त को तपस्या करने पड़ती है। विशेष करके आप भक्तों के बीच में जब आपस में डिस्कस करते हो, आपस में बिहेवियर होता है, तो आपको कई बार टॉलरेट करना पड़ता है, किसी की बात को आपको सहन करना पड़ता है। वो करना चाहिए, कभी फिजिकल प्रॉब्लम होती है टॉर्चरिंग, है ना, कि भाई मैं तो इसमें ऐसा कंफर्ट होगा तभी मैं तो सेवा करूँगा। नहीं, तपस्या करना चाहिए थोड़ा। फिर शौचम, समझ दमा तपस्या शौचम। शौचम का अर्थ है क्लीनलीनेस, स्वच्छता। भगवान कहते हैं वहीं पर आते हैं जहाँ पर स्वच्छता होती है। एक जगह प्रभुपाद बताया कि ये सारे गुण जो है वो होते ही है इसमें, लेकिन ये ढक गए हैं हमारी अज्ञानता के कारण। जैसे छुरी होती है, नाइफ, तो उसका धार है, शार्प है वो, लेकिन उसको थोड़ा घिसना पड़ता है। जब घिसोगे तो शार्प हो जाएगा। इस तरह से ये सारे गुण जो है वो है हमें, काटने का शक्ति हम में है अज्ञानता को, लेकिन गंध के कारण ये हमारा तपस्या चला गया है, पवित्रता चला गया। शौचम दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक स्नान होता है हरि नाम के द्वारा, आंतरिक स्नान कृष्ण भक्ति के द्वारा, अंदर का स्नान हृदय का स्नान। और बाह्य का स्नान होता है वो हम दिन दो तीन बार स्नान करते हैं। हर एक भक्त को, चाहे वो ब्राह्मण दीक्षित है, हरिनाम दीक्षित है या अभी तक दीक्षा नहीं लिया, हर एक भक्त को कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, कम से कम मिनिमम। और जब आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हो तो प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम 3 बार स्नान करें। ये हमारा प्रयास है, ये स्वच्छता रखना चाहिए, क्लीनलीनेस। फिर शांति, शांति का अर्थ होता है क्या प्रपद, क्या उत्तर अर्थ की शांति का? हाँ ओके, तो तपस सहनशीलता। प्रपद एग्जांपल देते हैं, मैं मेरे बच्चे को प्रेम करता हूँ, अगर वो रोएगा और कोई अगर वो मरेगा तो कोई रोएगा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मूर्ख है। अगर कोई यू नो इफ सो इफ ही डाइज एंड समबडी इज क्राइंग डज नॉट मीन ही इज अ फूल, बट इट इज मटेरियल अफेक्शन, ये भौतिक अफेक्शन है। तो भगवान कहते हैं तितिक्षा, सहन सहन करो। आगम पाए नो नित्यम ताम तितिक्षा स्वभाव, सहन करना सीखो। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है शॉकिंग, जैसे मेरे ब्रदर का देहांत हुआ था, तो जब मुझे न्यूज़ मिला कि वो हॉस्पिटल में थे, मैं घर पे था, और उनका मुझे पता था कि वो चांसेस नहीं 1% से भी कम है उनके बचने के, क्योंकि जब मेरे सामने से उनको ले गए थे हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस में अभी घर में, तो मुझे पता था कि इट इज ऑलमोस्ट गॉन, अभी बचेंगे नहीं दिखने में। लेकिन फिर भी मन ऐसा होता है, भौतिक मन, कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब आई गॉट द न्यूज़ रात को 11:15 बजे मुझे न्यूज़ मिला 11:30 बजे कि उनका देहांत हुआ है, दोपहर को 3 बजे तक मेरी आँख में से एक भी पानी नहीं आया था, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज़ को सोच रहा था, बार बार इसी चीज़ को सोच रहा था कि कृष्णा कुछ दिए और कृष्ण कुछ ले लिए, कृष्ण कुछ दिया और कृष्ण ने कुछ ले लिया। तो बार बार यही चीज़ को सोचता था, और फिर बाद में सोच रहा था कि हर एक के लाइफ में कुछ शॉकिंग इंसिडेंट्स होते हैं हमेशा, लेकिन दिस इज द बीटर ट्रूथ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये कड़वा सत्य है इस संसार का। सो दैट वे वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के भौतिक जो परिस्थितियों का बदलाव होता है तो हमें इसको सहन करना सीखना चाहिए। एंड मेनी ऑफ इट्स नॉट ओनली मी, आप कई सारे एग्जांपल आपके लाइफ में भी होंगे कि जिसमें आप बैलेंस कर पाते हो, डिस्टर्बेंस को बैलेंस कर सकते हो, और अपनी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करते, अपनी चेतना को डिस्टर्ब नहीं करते। दैट रिक्वायर्ड टू बी मैनेज। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरलता, है ना, व्हाट इज दैट, सरल। सो डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन कलयुगा कि लोग डुप्लीसिटी करते हैं, और डुप्लीसिटी करने वाले भी कैसे होते हैं, आई नो सम डिवोटीज आल्सो कैसे होते हैं, कि हालांकि उसको पता है सामने वाले भक्त को कि मुझे भी पता है कि वो डुप्लीसिटी कर रहे हैं, फिर भी डुप्लीसिटी कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा है, और उसको भी पता है कि प्रभु जी को जान, प्रभु जी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम इन डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी इज वेरी बैड। प्रभुपाद कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी बैड क्वालिफिकेशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, धोखा देना, इसको ये बताना, उसको ये बताना, इसको ये बताना, उसको बताना, पूरे गांव का नचाना, और करना हमें जो करना है वो होता है ना, बात बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, ये बोलेंगे वो बोलेंगे ये बोलेंगे, बोले भाई तुम करना क्या चाहते हो ये तो बताओ, वो नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बस दिस इज डुप्लीसिटी, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा नहीं बताएंगे, कान सीधा नहीं पकड़ेंगे, ऊपर घुमा के पकड़ेंगे. सो दैट शुड बी अवॉइडेड. ओके देन ज्ञानम वैराग्य समोधम तपस्वच शांतिर आर्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्ति किम. यस तो ज्ञान का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, इसको बोलते हैं ज्ञान थियोरी. और विज्ञान का अर्थ होता है उस ज्ञान का लाइफ में एप्लीकेशन करना, उसको उसको दिखाना. ऐसा नहीं ब्राह्मण को श्रीमद् भागवतम में है वर्णन, यजन याजन पठन पाठन दान विनिग्रह, यह है वो श्रीमद् भागवत. मीन्स ब्राह्मण का काम ये है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना शास्त्र को, पढ़ना शास्त्र को पढ़ाना, ये सब काम है ब्राह्मण का काम. लेकिन जो शास्त्र पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में दिखाते भी है, वो विज्ञानम है. दे शो अस बाय देयर एग्जाम्पल, बाय देयर आचरण कि इस तरह से होना चाहिए. ये ब्राह्मणिकल गुण. प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ब्राह्मण, कई बार प्रश्न होता है कि सबको ब्राह्मण दीक्षा क्यों दिया जाता है. अगर वर्णाश्रम होता है सिस्टम तो सभी डिवोटीज को ब्राह्मण इनिशिएशन क्यों दिया जाता है. ये सिचुएशन होती है, कई बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा था ऐसा कि एक जगह आप बताते हो कि वर्णाश्रम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और एक जगह आप बताते हो कि सबको ब्राह्मण फर्स्ट इनिशिएशन और फिर सेकेंड इनिशिएशन सबको ही लेना होता है. लेकिन वैष्णव बनने से पहले ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी होना अच्छा है, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण से पर होता है. जो क्वालिटीज ब्राह्मणों में होती है वो सारी क्वालिटीज एक वैष्णव में होती ही ऑलरेडी. तो ये सारी क्वालिटीज जो ब्राह्मण की हम पढ़ रहे हैं वो हमें एक भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए. विज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम. अस्तिक्यम अस्तिक्यम का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना वैदिक शास्त्रों को. शास्त्र में कभी शंका नहीं करना, गुरु में शंका नहीं करना, इस परंपरा में शंका नहीं करना. मैं आपको ये चीज़ फिर से क्लियर करता हूँ, क्योंकि शास्त्र, आचार्य, परंपरा और गुरु ये हमारे जो भी सोर्सेस है जिसके द्वारा हम गाइडेंस लेते हैं, इसमें अगर एक बार भी आपने थोड़ा सा भी शंका किया ना, तो परिणाम आएगा कि आपका कुछ समय के पश्चात पतन हो जाएगा. अगर आपने अपनी गलती को सुधारा नहीं है तो आपका पतन हो जाएगा. और हमारे कई ऐसे ब्राह्मण दीक्षित भक्त भी इस चीज को समझने में असफल हो जाते. इसलिए हम आपको अभी आप कहेंगे प्रभु जी अभी तो हमें दीक्षा भी नहीं हुई है और आप बता रहे हो कि ब्राह्मण दीक्षित असफल हो जाते हैं. लेकिन जब आप सीख रहे हो, आप अभी पढ़ रहे हो शास्त्र को, आप सीख रहे हो, इसलिए आपको आपके भविष्य का प्रिकॉशन पहले समझना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है, कि आगे जाके आपको कभी भी संशय नहीं करना है किसी भी चीज में. इसको आस्तिक्यम बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट करना, ये ब्राह्मण का क्वालिटी है. तो ये है ब्रह्म कर्म स्वभाव जन. राइट, आपको बता कुछ पूछना है ब्राह्मण को लेकर के, फिर हम क्षत्रिय की ओर जाएंगे. एनीथिंग टू आस्क इन ब्राह्मण. वो मंत्र क्या संध्या गायत्री. वो जो गायत्री है वैष्णव गायत्री मंत्र हमें जो दीक्षा देते हैं, वो गायत्री आपके हृदय को कोमल बनाता है और वो मंत्र पोटेंट होते हैं, पोटेंट मीन शक्तिशाली होते हैं। उस मंत्र में परंपरा का आशीर्वाद होता है, परंपरा का कृपा होता है और वो मंत्र आपके हरि नाम को भी शुद्ध करने में सहाय करते हैं, आपका जो सोदा माला है उसको ढंग से कराने के लिए हेल्प करते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट भगवान के साथ परंपरा के माध्यम से। आप यहाँ पर बैठे संध्या कर रहे हो लेकिन आपका हृदय डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्ट होता है, एक ही स्थान पर बैठे हो। ऐसा भी कहा गया है कि जब कोई भक्त गायत्री जब कर रहा है तो उसके पास में भगवान का विग्रह अपने आप प्रकट होता है, वहीं पर जब गुरु जी का विग्रह अपने आप प्रकट होता है। देयरफॉर जो गायत्री जप करते हैं उन भक्तों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दिस इज़ द रीज़न कि वो लोग डायरेक्ट पूजा हो रही है भगवान की। वहाँ पर गायत्री जप करना इट इज़ इन वन वे इट इज पूजा टू द लॉर्ड। और कोई प्रश्न? ब्राह्मण दीक्षा यू शुड क्लोज द डोर, ठीक है? खिड़की खुला है इसलिए आ इधर नहीं बंद, इधर बंद है ना। ओके ओके ठीक है। ब्राह्मण दीक्षा इसलिए लेना चाहिए जैसे मैंने जो बेनिफिट बताया सब अभी मंत्र के, कि मंत्र जप करने से आपका हरिनाम शुद्ध होता है, परंपरा से आप कनेक्शन होता है डायरेक्ट ऑफिशियल कनेक्शन, फिर आपको मंत्र के माध्यम से पूरी परंपरा की कृपा प्राप्त होती है आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और वो मंत्र गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया हुआ है, जो वो सीक्रेट मंत्र बोलते हैं उसको जो कान में जोता जाता है गायत्री मंत्र। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि वैष्णव ब्राह्मण के रूप में वो फिर भगवान का चरणों को स्पर्श भी कर सकता है, भगवान को स्पर्श भी कर सकता है। तो ये एक्चुअली हरिनाम दीक्षा जो आप लेते हैं ना, वो वास्तव में उसको केवल हरिनाम ही बोला जाता है, कई जगह पर दीक्षा नहीं बोलते। दीक्षा तो वास्तव में वही होता है जब आपको गायत्री दिया जाता है, वही दीक्षा बोलते हैं। लेकिन तीन प्रकार के जन्म होते हैं, उसमें से एक ये जन्म है, हरिनाम दीक्षा भी एक जन्म है और ब्राह्मण दीक्षा भी एक जन्म है, यज्ञ का जन्म, तो ऐसे अलग अलग जन्म है। प्रभुपाद ओनली प्रभुपाद ओनली स्टार्टेड ब्राह्मण दीक्षा, प्रभुपाद जी ने ही स्टार्ट किया ब्राह्मण दीक्षा। That is not the only reason. Means Prabhupada केवल लोगों को दिखाने के लिए ही ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिए। I understand. ये Prabhupada वो चीज़ इसलिए बताना चाहते हैं, why he said this thing, जो आप बता रहे हो वो इसलिए बताना चाहते हैं कि हरिनाम खुद इतना पोटेंट है कि उसको किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं है, हरिनाम इतना पोटेंट है। लेकिन अगर आपको अर्चन विग्रह की उपासना करनी है तो ये पंचरात्र विधि के अनुसार, भागवत विधि के अनुसार आपको ये रिचुअल से जाना पड़ता है, मंत्र दीक्षा लेना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई भक्ति सिद्धांत एस्टैब्लिश दिस, इट इज़ नॉट फॉर द जस्ट सेक ऑफ फॉर्मालिटी। ब्राह्मण क्योंकि राग मार्ग में ये सब चलता है। राग भक्ति जो होता है उसमें आपको दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं, उसमें आप सीधा ही राग मार्ग से भगवान यशोदा माता कहाँ दीक्षा लेने गए। ये गोपियाँ जो है उन्होंने कौन सी ब्राह्मण दीक्षा ली थी, सुबल सखा है इस सारे जो भगवान के मित्र है मधुमंगल है, वो कौन सा दीक्षा लेने गया था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, नित्य सिद्ध क्यों होते हैं क्योंकि वो राग मार्ग से भगवान से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम लोग बद्धावस्था में हैं इसलिए हमें साधन भक्ति के मार्ग से जाना पड़ता है, और साधन भक्ति का ये मार्ग है कि हमें ये सारे जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर दैट रीजन वी हैव टू टेक ब्राह्मण दीक्षा ऑल्सो, इसलिए ये बनाया गया सिस्टम। प्रभुपाद ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, हरिनाम दीक्षा वाले भक्तों को ब्रिटिश को नहीं छूने देते थे, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट कि आपको ब्राह्मण दीक्षा लेना ही पड़ेगा। इवन माधवेंद्रपुरी डिड दिस, माधवेंद्रपुरी ने श्रीनाथ जी विग्रह की स्थापना की थी और उनके पास कई लोग थे कि जो पूजा कर सकते थे, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने कहा कि नहीं आप ऐसे पूजा नहीं कर पाओगे। तब फिर उन्होंने दीक्षा प्रोग्राम अरेंज किया वहीं पर गोवर्धन में, एंड ही इनिशिएटेड टू ब्राह्मिन्स ये मंत्र दीक्षा से, एंड देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग श्रीनाथ जी। सो everyone, all our acharyas, they follow this parampara. Therefore, if anybody comes and say, कोई आके कहता है कि ये सब तो बेकार है, ये ब्राह्मण दीक्षा वगैरह तो सब यू नो दिखावे के लिए है, मेन तो हमारा इंटरनल कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट भगवान से हरिनाम के माध्यम से, सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी फिफ्थ ऑफेंस। फिफ्थ ना कौन सा, चौथा ऑफेंस, छठा या चौथा ऑफेंस, मिस इंटरप्रिटेशन इन द होली नेम, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। कौन सा ऑफेंस होता है वो, छठा ऑफेंस है। दस नाम अपराध भगवान के, पांचवा नाम हरिनाम को महिमा को काल्पनिक समझना, और छठा है गलत अर्थ निकालना, गलत अर्थ निकालना उसका, तो ये अपराध होता है हरिनाम में। नाउ आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग इन कनेक्शन विद दिस, कि जो गायत्री वैष्णव जप करते हैं ना, जो गायत्री वह डायरेक्टली राधा कृष्ण की भक्ति देने वाली है, डायरेक्टली, दैट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मा जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को एक दिया था ये ज्ञान। सो देयरफॉर चैंटिंग गायत्री मंत्र इट इज ब्रिंगिंग डिवोटी यू नो इन डायरेक्ट कनेक्शन विथ कृष्ण। तीन दिन पहले मैं एक तात्पर्य पढ़ रहा था जिसमें प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य लिखा है गायत्री मंत्र की महिमा पर, ऑन द ग्लोरीज ऑफ गायत्री मंत्र। सो दैट वी शुड टेक टू दिस, इस तरह से हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। सो वी गो टू क्षत्रिय, पढ़िए
उदारता तथा
नेतृत्व,
ये शक्ति के
स्वाभाविक
गुण
है। हाँ ये है कितना साथ है ना, है ना, शौर्य तेजो दृढ़ाक्ष युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्रम कर्म स्वभाव। ये आपको ट्राई करना चाहिए इसको कंठस्थ करने के लिए, ये सारे चारों के चारों, शौर्यम तेजो तो तेजाक्षम युद्धि चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश क्षात्रम कर्म स्वभाव। तो वीरता, ये वीर होता है उनका क्षत्रियों का जो प्रपद होता है शौर्यम हीरोइज्म, जैसे प्रहलाद परीक्षित महाराज, उन्होंने देखा कि कलियुग धर्म पर आक्रमण कर रहा है श्रीमद् भागवत में, तो तुरंत अपना स्वॉर्ड निकाला, तुरंत अपना खड्ग निकाला तलवार, और उसको आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा नहीं कि पहले एक बार थोड़ा बात करते हैं, ट्राई करते हैं उसको समझ जाए तो समझा जाए, ये सब काम ब्राह्मणों का है शांति से काम करना। क्षत्रिय सीधा हीरोइज्म दिखाता है, वो सीधा हथियार उठाएगा, सुनता है कि नहीं, अरे क्षत्रिय मेंटल, अरे किंग राजा, ये राजा का काम है। Nowadays, what is a hero? He is not becoming a president. Aajkal kshatriya hote hain, wo kya karte hain? Peeche chupke baithte hain. Do deshon ke beech mein yuddh hota hai, lekin dono raja apne apne comfort zone mein, cabin mein baithkar ekdam safe hokar ke baithte hain. Aur pura remote control karte hain sare war ko. Lekin pehle ke samay mein राजा सबसे आगे रहते हैं और फिर सारी प्रजा वो सैनिक उनके साथ होते हैं. सैनिक हेल्प के लिए होते हैं, मेन योद्धा तो राजा होते हैं. अभी क्या होता है, सैनिक मेन युद्ध करते हैं. सो फिर तेज शक्ति होती है, भीख नहीं मांगते. प्रभुपाद कहते कि वो लोग भीख नहीं मांगते, गिव मी वोट, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो. जैसे आजकल नेता मांगते हैं ना, वोट बैंक बनाते हैं, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, वोट तो केवल मुझे ही, वोट तो केवल इसको ही मिलना चाहिए. प्रभुपाद कहते हैं कि वो लोग भीख नहीं मांगते इस तरह कि हमें वोट दो. उनका शक्ति इतना होता है, बोले तुम वोट दोगे कि नहीं दोगे, राजा तो एक ही बनेगा, कौन मैं. दिस इज द सिस्टम. ये है रियल किंग इज दिस. फिर युद्धे चलायन भाग नहीं जाते युद्ध में, पीठ नहीं दिखाते, मारो या तो फिर मरो. जैसे भीष्म और उनके गुरु के बीच में युद्ध हुआ था परशुराम जी के, तो भीष्म जीतने वाले थे, तो परशुराम ने बोला अभी तुम्हें मारना पड़ेगा मुझे, लेकिन परशुराम तो अमर है, मार नहीं सकते उनको. तो बोले अभी तुम्हें खत्म करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि युद्ध का नियम ऐसा है कि एक मरेगा और एक जिएगा, एक पराजित और एक विजयी, ये नियम है. ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हल्ला करके भाग गए, ऐसा नहीं. आजकल के युद्ध होते हैं ना, उसमें ऐसा होता है, तुम्हारा मैं 100-200 करोड़ का नुकसान तुम्हारा कर दूँ, तो हमारा 200 करोड़ का नुकसान कर दो, बस अब हमारी कैपेसिटी खत्म, तुम अपने घर, मैं अपने घर. इस प्रकार के युद्ध नहीं होते थे. जब युद्ध हुआ तो एक का तो नाश होना आवश्यक है, एक को तो मरना ही है, या मरेगा या तो फिर उसको बंदी बना दिया जाएगा, दास बना दिया जाएगा, वो दास बन जाएगा. लेकिन दो राजा बाद में नहीं रहेंगे. ये लोग तो आजकल के समय में ये संभव नहीं है. ऐसे कई महाभारत के युद्ध में ऐसे कई हुए थे इंसिडेंट. जैसे दुर्योधन अर्जुन के बीच में एक बार युद्ध हुआ था, तो दुर्योधन को अपमानित करके छोड़ दिया था अर्जुन ने. मरने आया था, मर सकता था, उसके सारे हथियार हटा दिए. अर्जुन ने बोला कि अब मेरा एक बाण काफ़ी है बस, अब मैं तुझे एक बाण मारूंगा, युद्ध खत्म हो जाएगा आज. लेकिन अर्जुन ने नहीं किया ऐसा, क्योंकि दूसरा नियम ये है कि कोई शस्त्र विहीन जो निशस्त्र है उस पर आक्रमण नहीं कर सकते. ऐसे धर्मों के नियम होते थे, ये सब पालन किया जाता था. आज तो हम इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता. सूर्यास्त के समय युद्ध खत्म हो जाना, आज तो सारा दिन रात चलता ही रहता है
ना.
आज की कल्पना ही नहीं कर सकते हम. कोई नियम 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 जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है आजकल. सो फिर है युद्धम अपरायम, फिर दानम दान देना. तो क्षत्रिय जो होते हैं वो दान देने में कभी भी पीछे नहीं हटते, वो हमेशा दान देते रहते हैं. और जैसे अगर आपको याद हो, जरासंध के पास 3 ब्राह्मण गए थे, एक था अर्जुन, भीम और कृष्ण. ये तीनों ब्राह्मण बन के गए थे, बोले दान देना है, दान चाहिए. तो जरासंध बोले समझ गए, तो नकली है सब, तीनों के तीनों नकली है. लेकिन ब्राह्मण के वेश में आए, बोले क्या चाहिए भिक्षा में, दान में क्या चाहिए. तो कहा कि मैं हम लोग तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। तो जैसे कर्ण कर्ण को इंद्र ने मांग लिया कि तुम्हारा कवच कुंडल दे दो, उसको पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसने मांग लिया तो, लेकिन फिर भी दान देने में वो लोग पीछे नहीं हटते। ये क्षत्रिय का कार्य होता है, सेम ईश्वर भाव। फिर आगे है ईश्वरत्व, ईश्वर भाव। यक्ष प्रश्न में अर्जुन को बोला गया, ए अर्जुन पानी को हाथ में लगाना। अर्जुन सोचे थे कहाँ का, तो कौन जो भी होगा देवता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो कोई देव होगा ना। और मैं इंद्र के पास जाकर के सारे दिव्यास्त्र ले आया, गंधर्वों को हरा दिया है, और तुम क्या मुझे रोकेगा, पानी नहीं छू सकता, जानता नहीं मैं अर्जुन। एक्चुअली अर्जुन का अहंकार नहीं था, ये क्षत्रिय की स्पिरिट है, क्षत्रिय भावना। एक बार चैलेंज कर दिया, खत्म। हाँ, वो उसका ये बहुत क्षत्रिय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो भाई क्यों करना है सब प्रतिज्ञा ना, क्षत्रिय करना। क्षत्रिय ऐसे होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो ये सारे गुण क्षत्रिय में होने चाहिए। क्षत्रिय के बहुत सारे ऐसे गुण हैं लेकिन ये मुख्य गुण है। जैसे दान होता है उसमें क्षमा भी आ जाता है, दान का जो गुण है उसमें क्षमा भी आता है। एक बार अलेक्जेंडर सिकंदर उसके पास एक चोर को पकड़ के ले गया है, तो चोर अलेक्जेंडर उसको सजा दे रहा था। चोर ने कहा, बोले तुम बड़ा चोर है, मैं छोटा चोर हूँ, हम दोनों में क्या अंतर है, तुम बड़ा चोरी करता है, देश देश को लूट लेता है, मैं छोटा चोरी किया, चोर तो हम दोनों ही हुए ना, तो फिर क्यों मुझे सजा हो रही है। तो अलेक्जेंडर बोले ठीक है भाई छोड़ दो इसको। सो ये इस प्रकार के क्षत्रिय विचार हमें जैसे मैनेजमेंट, दैट इज क्षत्रिय बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन करना एक क्षत्रिय का काम है। ओके, नेक्स्ट इज वैश्य।
वैश्यों के गुण, कृषि करना और अच्छा का व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और सूत्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना।
यस, इसमें दोनों है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभाव पाली परिचर्यात्मकम कर्म सूत्र से आदि संभावना। तो ये बिजनेस करना, बिजनेस करना ये वैश्य का काम, कृषि गोरख, कृषि का अर्थ खेती। एक्चुअली एक जगह प्रभुपाद बता रहे थे कि खेती करने से लोग ऐसा बोलते हैं, आज के समय में खेती करना मीन्स लो क्लास माना जाता है। मतलब खेती करता है क्या, बेकार आदमी खेती करता है, या तो फिर उसको बोलते हैं बोले तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, गांव में जाकर तुझे खेती करनी पड़ेगी। अरे भाई, खेती करने वाला सबसे बुद्धिमान माना जाता है, इंटेलिजेंट माना जाता है खेती करने वाला वो। और ये जॉब करने वाला जो है वो नेक्स्ट लेन में आता है। शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ये शूद्रों का काम है। जॉब करने का अर्थ होता है शूद्र का काम। जॉब का अर्थ क्या हुआ कि आपका एक बॉस है और आप एम्प्लॉय हो, दैट इज शूद्र। सिर नहीं झुकाते बिजनेसमैन, सिर नहीं झुकाते, दैट इज वैश्य। यस सर नहीं बोलना पड़ता उसको, वो केवल यस सर दो लोग को ही बोलता है, एक तो प्राइम मिनिस्टर की सरकार को बोलता है यस सर, और एक ब्राह्मण सन्यासी को बोलता है यस सर, बस, और किसी को यस सर नहीं बोलता वो। लेकिन शूद्र का काम है जो भी, आई मीन टू बी प्रैक्टिकल, क्योंकि आज के समय में अभी ये सिस्टम ज़्यादा हो रहा है, इससे हमारे भक्त लोग भी बहुत सारे हैं जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन आइडियली जॉब करना शूद्र का काम है। शूद्र, दिस इज शूद्र, जो निर्जीव वस्तु के साथ संपर्क रखता है वो शूद्र माना जाता है। जो आपके इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वो सारे शूद्र मान जाते हैं, आउट शूद्रस, सॉरी टू से, अगर आप में से कोई इंजीनियर हो तो मैकेनिक तकनीकी काम मैकेनिक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सूत्र आई टी वाले सारे सूत्र जिसे शुद्ध का काम है जॉब करना और बिजनेस करने वाला जो होता है ना ये टाटा बिरला अंबानी वगैरह जो ये लोग क्या होता है उनके नीचे शुद्ध काम करते रहते हैं बहुत सारे उनके जितने भी एम्प्लॉयज है सारे शुद्ध को लगाता है वो अपने काम में अपने बिजनेस में। हालांकि शुद्ध बनने में भी हम लोग हम तो उसमें भी गर्व अनुभव करते हैं, बोले मैं टाटा में जॉब करता हूँ क्या करता तो जॉब ही है ना, बोले मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ तो क्या हो गया, बोले शुद्ध तो शुद्ध ही रहेगा ना, रिलायंस में जॉब करेगा तो क्या, यानी शुद्ध स्वभाव एक शुद्ध का काम दासत्व सेवा परिचर्या सेवा करना ये शुद्ध का काम। फिर वो चाहे आप कोई मैनेजर की पोस्ट पे एम्प्लॉय हो तो भी शुद्ध ही माने जाओगे, अगर आप म्यूनसिपालिटी के क्लीनिंग कर्मचारी हो तो भी शुद्ध ही माने जाओगे कि आपको कटर साफ करनी वो भी शुद्ध का ही काम। ये अधिक तमोगुणी है शुद्ध अधिक तमोगुणी होता है। तो ऋषि खेती गौ रक्षा गायों की रक्षा करना ये इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। देखो और कुछ नहीं कहा, भैंस रक्षा नहीं बोला इसमें और कोई पशु रक्षा नहीं बोला, स्पेसिफिक किया है पशु रक्षा ऐसा नहीं बोला, यहाँ लिखा है स्पेशल गौ रक्षा गाय की रक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्यों भगवान उसको लिस्ट में क्यों लगाते हैं, लिस्ट में डाला है इसको गौ रक्षा, क्योंकि जिसके पास अधिक गाय होती है वो अधिक धनवान माना जाता है, जिसके पास अधिक मक्खन दूध इत्यादि होता है वो अधिक धनवान माना जाता है। ये आपके बैंक अकाउंट से धनवान नहीं बनते कोई, वो सब तो उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी रात को 10:30 बजे आके अनाउंसमेंट कर दे कि बोले कल से तुम्हारी ये नोट काम करने बंद हो गई तो दूसरे दिन कंगाल खत्म, वो धनवान नहीं है, धनवान ये है गौ रक्षा। और वाणिज्य वाणिज्यम का अर्थ है ट्रेडिंग वाणिज्य, वो व्यापार करता है धंधा करता है बिजनेस, जैसे आपके शॉप होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये वाणिज्य। तो इसलिए अगर भक्तों को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इस तरह से पढ़ाओ कि वो लोग कम से कम वैश्य बने, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन वैश्य शूद्र ना बने। वो जॉब करने के लिए धक्के खाए या लाइन में खड़ा रहे ऐसा मत सिखाना करो, उसको ऐसा सिखाओ कि वो बिजनेस करे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे क्षत्रिय का काम यू नो आर्मी मिलिट्री का, या फिर उसको ब्राह्मणत्व सिखाओ यू नो क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर पढ़ाना। सो दिस इज नाउ कृष्ण इज सेइंग अबाउट स्वे स्वे कर्म, कौन अपने अपने कर्तव्य कर्म करके किस तरह से कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये चारों चार जो वर्ण है उसकी आवश्यकता समाज में होती है। एक तो ब्राह्मण के बिना मस्तक के बिना समाज अधूरा है, अगर ब्राह्मण आपको गाइड करने के लिए नहीं है बताने के लिए तो फिर लोग क्या करेंगे, ऐसा आपका वो क्या लिखा है उसने अंबेडकर ने एक्चुअली नियम बनाना काम ये अंबेडकर का किसी शूद्र का नहीं होना चाहिए, ये नियम बनाने का काम ब्राह्मण का होना चाहिए। जैसे मनु संहिता अभी भी यूज़ हो रहा है कई जगह, तो मनु संहिता ये हमारे संसार के नियम है, इस तरह ब्राह्मण का काम इंटेलिजेंट ब्यूरो दैट इज ब्राह्मण, आईबी जो है वो ब्राह्मण का काम है इंटेलिजेंट ब्यूरो। फिर क्षत्रिय तो क्षत्रिय वो भी समाज की रक्षा के लिए आवश्यक है, अगर क्षत्रिय ठीक नहीं है समाज बेकार है। जैसे राजा नहीं थे, वेन था राजा, तो उसको हटाना पड़ा, पृथु को लाना पड़ा, तो क्षत्रिय रिक्वायर्ड, क्षत्रिय चार्जेस करता है साम दाम दान भेद, वो उसका बेसिक होता है ये इन गुणों के आधार पर। जानते हो ना साम दाम दान भेद को क्या होता है, किसी चीज़ को मनवाना है तो पहले शाम यूज करना होता है, समझाओ उसको शांति से, शांति से नहीं समझता है तो उसको दान दो, है ना, कुछ ब्राइब, कुछ कुछ उसको ऑफर दो कि अगर तुम ये करोगे, मेरी बात को मानोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, एक ऑफर देना है, शाम फिर दान। फिर भी अगर वो नहीं समझता है तो फिर डिवाइड करो, उसकी स्ट्रेंथ को डिवाइड करो, भेद, तो एक दो लोग आपस में अच्छा बन रहा है तो उसको कैसे भी करके क्लक करो, तो भेद साम दाम भेद। और तब भी अगर वो नहीं समझता है तब फिर उसको दंड दो, ये क्षत्रिय का काम, इस तरह से वो रूल करता है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ये चार चीज होना जरूरी है, ये चार चीज होगा तभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सकता है। और वैश्य जो है, आजकल वैश्य कम होते जा रहे हैं और शूद्र बढ़ रहे हैं, और परिणाम ये आ रहा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, ये परिणाम आ रहा है। मीन्स लोग, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद खाने के लिए जो चाहिए वो तो वैश्य का काम है, लेकिन सब पागलपंथी कर रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सब पैसा कमाएंगे और फिर किसान बचेगा ही नहीं तो खाएगा क्या, जब किसान बचेगा ही नहीं तो खाएगा क्या। तो ये समाज का डिवीजन अभी ना हो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धि लभते, पढ़िए।
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता।
पढ़िए नेक्स्ट।
अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य
नहीं, उसके ऊपर एक श्लोक है,
जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णतया प्राप्त कर सकता है।
yes. चाहे कोई व्यक्ति किसी भी गुण में हो, वो अपनी जो कर्तव्य है उसको, अपने कर्म है उसको भगवान को अर्पण करके, निष्काम कर्म योग भगवान को अर्पण करके करेगा तो वो इससे मुक्त हो सकता है कर्म बंधन से। तात्पर्य में अंतिम पैराग्राफ पढ़िए। अंतिम पैराग्राफ।
प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी किसी के इस द्वारा यह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यह तो है इस प्रकार से कृष्ण भावनामय हो कर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12:7 कहा है, तेसा हम सुतरम धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस प्रति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभुपाद बहुत सरल रूप से बताया, क्योंकि जब चार चीज बताएंगे तो जैसे कोई भक्त सोचेगा कि प्रभु जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो क्षुद्र कैटेगरी में आया तो मेरा तो उद्धार करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बताए आप जहाँ कहीं पर भी जो कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर आपके कर्तव्य आपके कर्म जो है भगवान की शरण में आप लगाते हो, सेवा में लगाते हो, तो वो भी जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही मिलेगा, वैश्य को ही मिलेगा, ऐसा सबके लिए कृष्ण भक्ति। ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो था चैतन्य महाप्रभु, भिखारी था, भीख मांगता था, और फिर भी भगवान उसके पोटली में से भोजन लेते थे हाथ डालकर। तो ऐसे चाहे कोई शूद्र हो या कोई ब्राह्मण हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, एक जगह कहा है ना, शूद्र से नीचे होता है कुत्ते को खाने वाला। कोई कुत्ते को खाता है वो चंडाल होता है, कुत्ते को तो कोई नहीं खाता, लेकिन जो खाता है, कुछ लोग खाते हैं कुत्ते को, वो चंडाल होते हैं। वहाँ उन लोग का तो कोई बात ही मत पूछो, उनका तो कोई वो तो सारे चंडालों के किंग है। हाँ सब चंडाल चंडाल लोग हैं सब, गुण का प्रभाव, आसपास का प्रभाव, पड़ोसी का प्रभाव। तो ये चंडाल लोग जो होते हैं अत्यंत निम्न, शुद्र से भी नीचा होता है वो, तो ऐसे चंडाल भी अगर कृष्ण भक्त बनता है तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है जो ब्राह्मण भगवान का भक्त नहीं। शुचि है मुचि यदि कृष्ण त्यजे, मुचि है शुचि यदि कृष्ण भजे। सत्कर्म निपुणो विप्रो ब्रह्मकर्म विशारद मंत्रतंत्र विशारद बलिदार सत्कर्म निपुण विप्रो मंत्रतंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात्। अगर कोई ब्राह्मण है, मंत्र तंत्र जानता है और सब में विशारद एक्सपर्ट है, सारे रिचुअल्स वगैरह सब में, लेकिन अगर वो वैष्णव नहीं है तो अवैष्णव गुरु न स्यात्, वो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं। वैष्णव स्वपचो गुरु, ये वैष्णव जो नागालैंड से आता है, जो चाइना से आता है, अगर वो भक्त बन जाता है, भले उसने कुत्ते का मांस खाया था पहले, लेकिन अगर वो वैष्णव बन जाता है तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है, वो सारे समाज का गुरु बन सकता है, सारे संसार का गुरु बन सकता है। यस, तब आप ये नहीं सकते, अरे ये तो चंडाल था अब नहीं। सो तेषाम अहम समुद्धारता, मैं करता हूँ, मैं भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आता तो मैं उसका काम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट।
अपनी वृत्ति पर कार्य को करना चाहे वह कितना भी त्रुटि पूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अपनी और अच्छी प्रकार की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म सभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते।
यस, यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं स्वधर्म विगुण, अगर आपको आपके कर्तव्य कर्म करते रहो, अपने वृत्ति पर कर्म वो कर्म करते रहो, लेकिन वो चाहे त्रुटिपूर्ण करोगे तो चलेगा। अगर आप ब्राह्मण हो, आपका काम ब्राह्मणिकल आपका क्वालिटी है, उसमें अगर आपकी कोई त्रुटि है, समझ लो आप किसी नियम में चूक कर गए, आप कुछ ढंग से उसका पालन नहीं कर पाए, वो चलेगा, लेकिन शस्त्र हाथ में उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्षत्रिय मत बनाओ। उसी तरह से अगर कोई क्षत्रिय है, वो इतना युद्ध में एक्सपर्ट नहीं है या किसी कारण से युद्ध नहीं कर सकता, तो उसको ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांगना नहीं चाहिए। श्रेयान स्वधर्म विगुण, अपने धर्म का पालन करना भले त्रुटिपूर्ण हो वो चलेगा, लेकिन परधर्मात्मनुष्ठिता, दूसरे का नहीं करना चाहिए काम, जो अपना कर्तव्य वही करना चाहिए, अपने स्वभावगत करना है वो करना चाहिए। इसलिए कभी फॉर एग्जाम्पल अगर ये नहीं सोचना चाहिए भक्तों को कि सभी भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये जरूर नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी भक्त टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। सभी भक्त पुजारी बन सकते हैं, सभी भक्त लेक्चरर बन सकते हैं, ये अपने अपने स्वभाव पर अपने अपने गुण के ऊपर आधारित है ये कार्य, और अपने अपने पंख होते हैं उसका उपयोग करके हमें हमारी उड़ान भरनी चाहिए। और सबको एक्सेप्ट करते भगवान, ऐसा नहीं कि भाई वो आपका ईगल कितना ऊपर उड़ता है ना, बहुत ऊंचा जाता है ना ईगल, तो सबसे ऊंचा कौन जाता है, शायद वही ईगल ही जाता है ना, तो बहुत ऊंचा उड़ सकता है वो। और मोर कितना, मयूर वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, 8 फुट 10 फुट है ना, 8-10 फुट से अधिकतर नहीं। और वो मोर एक देश छोड़ के दूसरे देश नहीं जा सकता ना, मोर में एक क्षमता नहीं, तो उसकी क्षमता है जितनी उतने से वो उड़ सकता है, और ईगल ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन दोनों अपनी अपनी क्षमता से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये मत सोचिए कि इसकी क्वालिटी अलग है, प्रभु जी अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये आता नहीं कैसे करना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जो जिस प्रकार से सेवा करने में क्वालिफाइड है या जो जिस प्रकार की अपनी स्वाभाविक रुचि है उस स्वभाव से सेवा करना चाहिए। और इसलिए इन भक्तों में कभी ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए, भाई ये तो मंदिर साफ करने वाला भक्त है, इसका क्या वैल्यू, ये तो टेंपल प्रेसिडेंट है, या तो फिर ये तो बहुत बड़े प्रचारक है, इस तरह से जो सेवा अपने कॉलेज अपनी पूरी क्षमता से जो सेवा करता है वो भगवान का सेवक ही है, सर्वंट, क्यों अपने कर्तव्य कर्म को पालन कर रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हो, यू आर वर्किंग इन बैंक, आप बैंक में कहते हो, आप किस में कार्य करते हो, कोई भी आप किस में कार्य करते हैं, हाँ कंस्ट्रक्शन, हाँ अभी कंस्ट्रक्शन में मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो केवल इतना बता सकता हूँ कि ये अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छा लग रहा है और ये बुरा लग रहा है, इतना अच्छा है, बस इतना मुझे आता है, इतना बोल सकता हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है वो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि किस तरह से उसका मेजरमेंट लिया जाता है, किस तरह से कितना सामान चाहिए उसके लिए, मेरे जीरो है उसके विषय में, लेकिन मेरा वृत्ति है शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ाना, तो ये मेरा काम है, मीन्स ये मेरा स्वभाव है, तो वो चीज़ मैं अगर अच्छे से कर सकता हूँ सो दैट इज़ गुड, लेकिन मैं दूसरे का धर्म मैंने, मैं इसमें भी थोड़ा यो माँ क्या बोलते वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो वो दैट इज नॉट समथिंग वेरी गुड, डू योर बेस्ट एज पर योर कैपेसिटी। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए किसी भक्त को, हाय हाय अब मुझसे तो ये सेवा नहीं हुआ, प्रभु जी मैं तो बड़ा नीच हूँ, अधम हूँ, अरे तुमसे जो सेवा हो रहा है करो, जो सेवा तुम कर सकते वो करो, डू इट नाइसली अच्छे से करो। क्या नाम प्रभु जी का, श्यामानंद प्रभु, वो श्यामानंद जो थे 11 साल तक झाड़ू मारने का सेवा करते थे, 11 साल तक सोचो, और ऐसा इतना बड़ा कमरा नहीं था, इतना छोटा सा जगह था बस, उसमें झाड़ू मारने का सेवा था, सुबह शाम 2 बार झाड़ू मारना, 2-3 बार दिन में, ये उनका सेवा था। और उनको 11 साल तक की सेवा किया, उनको पता 11 साल के बाद परिणाम क्या मिला, उनको परिणाम मिला कि स्वयं राधा रानी दर्शन दिए, स्वयं राधा रानी दर्शन दिए, और उसका नाम बदल दिया, उसका नाम बाद में रखा श्यामानंद। हाँ, वॉज इट दुखी कृष्णदास, वो सुखी कृष्णदास हो गया, उसका नाम श्यामानंद हो गया, आनंद। तो आप समझ रहे हो ना, झाड़ू मारने का सेवा गलत नहीं है। 11 साल तक झाड़ू मारने पे ये हुआ, फिर आप बोले प्रभु जी मैं भी 11 साल तक झाड़ू मारूंगा। नो, बट द आइडिया इज डू योर बेस्ट विथ बेस्ट कॉन्शियसनेस यू कैन। सो डोंट कंपेयर, तुलना मत करो इसके बीच मेरे में और आप में, इसमें उसमें, इस तरह से तुलना मत करो। सेवा करो, अच्छे से करो। ओके, लेकिन चाहे आप अच्छे से सेवा करते हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन एक समस्या रहती है। क्या समस्या है? कि हम सब भौतिक संसार में हैं, और भौतिक संसार का नियम ऐसा है कि एक भी कार्य 100% परफेक्ट नहीं होता। ये संसार का नियम है, भौतिक संसार का। एक भी कार्य 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप कहेंगे ना गुरु जी इसमें ये कार्य में 100% परफेक्ट किया, तो आपको अगर त्रुटि निकालनी है तो मिल जाएगी, अगर निकाल लिया तो मिल जाएगी। तो वो ही भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, पढ़िए।
प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आपत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आपत रहती है, अतः देवपुत्र पुत्र अर्जुन को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोष पूर्व क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं।
हाँ, इसलिए भगवान ने इसको जस्टिफाई कर दिया। अगले श्लोक में बोला ना कि श्रेयां स्वधर्म विगुणा, विगुण शब्द यूज किया ना भगवान ने, कि अगर दोष युक्त अपना स्वधर्म करोगे वो अच्छा है दूसरे के धर्म को लेने से। फिर भगवान ने ऐड कर दिया कि ज्यादातर सभी स्वधर्म विगुण ही होते हैं, अक्सर सारे विगुण ही होते हैं। आए पिछले वाले श्लोक में था ये चीज, श्रेयां स्वधर्म विगुण, और यहाँ पर भगवान बताया संसार में जितने भी कर्म है सभी दोष युक्त है। सर्वारंभा ही दोष ना, सर्वारंभा अभी यहाँ पर क्लियर है, सर्वारंभा, सर्वारंभा उसकी शुरुआत से ही सारे उद्योग, मीन्स दे आर बोर्न इन मटेरियल वर्ल्ड, सो दे आर सर्वारंभा ही दोष ना, दोष युक्त होते हैं। धुमेना अग्नि दिवावृता, किस प्रकार के, जिस प्रकार से अग्नि धुएं से आवृत रहती है। तात्पर्य पढ़िए अग्नि वाला नीचे का पैराग्राफ।
यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धता मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतः कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जोड़े के दिनों में कोई जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग धुलते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्यागनी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना व्रत में रहकर अपने प्रति परोपकार से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प लें। यदि सिद्धि अवस्था है जब कोई भी प्रति परोपकार भगवान को प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है।
तो यहाँ पर अगर अर्जुन का देखा जाए तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तो तैयार था, लेकिन सामने वो भीष्म द्रोण आ गए बीच में, और इसलिए भी परेशान होने लगा कि अब कैसे करूँ, हाय हाय क्या मारूँ, किस किस तरह से इस तरह से सोचने लगा। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बताए, भगवान यहाँ पर बताए कि भाई कुछ भी करोगे तो कुछ तो दोष रहता ही है सब में, लेकिन मुझे अर्पण कर दो तो ये काम मेरी प्रसन्नता से होगा, मेरे आदेश से होगा, तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन अपनी मनमानी करोगे, जनरली एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे का धर्म क्यों करता है पता है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अपनी निजी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और जब उसकी निजी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस तरह से अपना स्वधर्म त्याग करता है, तब उसको बंधन लग जाता है। इसका तात्पर्य बड़ा आसान है कि कभी भी कोई व्यक्ति अपनी निजी इंद्रिय भोग की कामना करके कर्म करेगा तो उसको स्वाभाविक रूप से बंधन होगा ही, इसलिए अपने अपने स्वभाव, अपने अपने विशेष गुण के आधार पर भगवान की सेवा में लगना ये सर्वश्रेष्ठ, ये सबसे उत्तम। तो यहाँ पर वर्णाश्रम और दैव वर्णाश्रम दोनों चीज को समझना आवश्यक है, इसका हम भी डिटेल नहीं करते, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक वर्णाश्रम जो है वो वैदिक शास्त्र में बताए गए उस अनुसार तीन गुणों से आधारित है, और दैव वर्णाश्रम में एक चीज स्पेसिफिक होती है कि उसमें कृष्ण भक्ति ऐड हो जाते हैं हर एक आश्रम में, हर एक वर्ण में। इसलिए अगर वो पूर्ण रूप से दैव वर्णाश्रम को अनुकूल करने का प्रयास करता है तो तीन गुणों से पर हो जाता है, चाहे वो क्षुद्र हो तो फिर भी तीन गुणों से पर हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए कि कोई क्षुद्र हो, जैसे वो नारायणी दासी थी, उनके मेड थी उनकी बेटी, तो ये दासी थी फिर भी उसको कृष्ण भक्ति महाप्रभु दे दिया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, कृष्ण भक्ति से उत्तम वस्तु और कुछ नहीं। एक जगह प्रभुपाद ऐसे भी बताए थे, आगे श्रीमद् भागवतम सब में आएगा ये चीज को, कि अगर कोई इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता, शूद्र नहीं बन सकता, उसको कुछ भी नहीं आता, अगर फिर भी वो हरि नाम जप कर सकता है और वैष्णव की सेवा कर सकता है तो उसका काम हो जाएगा। वर्णाश्रम के बाहर रहते हुए भी वो भक्ति स्वीकार कर सकता है। सो अभी भगवान वर्णाश्रम कर्म और निष्काम कर्म के स्टेज पे आता है, लेकिन अभी ज्ञान के स्टेज पे फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे के श्लोक में ज्ञान योग के आधार पर समझाते हैं। पढ़िए।
जो आप संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्त की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है।
अभी ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है वो आत्मसंयम और अनासक्त है, संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति सर्वोच्च सिद्ध अवस्था। कर्मफल के मुक्ति जो ज्ञानी होता है वो कर्मफल या तो फिर संन्यास, कर्मफल का त्याग करता है संन्यास के माध्यम से, उस चीज का वर्णन प्रभुपाद डिटेल में बताते। पढ़िए तात्पर्य। हाँ, एक पैराग्राफ है।
सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है, चूंकि वह परमेश्वर का अंश है अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए अनासक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदि हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है, जैसा कि प्रति अध्याय में पुष्टि हुई है। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता।
यस, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में ऐसा कहते हैं कि अगर सारे कर्मों में दोष होता है, सारे कर्मों में दोष होता है तो क्या करना चाहिए। तो सन्यासी क्या करता है, यहाँ पर जो बताया कि पहले लेवल का सन्यास क्या करता है कि जो फॉल्टी दोष वाला एस्पेक्ट होता है, दोष उसका त्याग करता है। जैसे कि कर्म में दोष का अंश कैसे होता है, कर्ता बनने का, ये दोष का अंश है, मैं करता हूँ, ये दोष है कर्म का। या फिर उसमें से कर्म फल की इच्छा करना, ये कर्म का दोष है। तो ये दोनों को त्याग कर देता है वो सन्यासी, कि कर्ता और कर्म फल ये दोनों को त्याग करता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानता और कर्म फल नहीं चाहता। उसके बाद फिर जब उसकी साधना ठीक हो जाए, आगे बढ़ता है जब वो, तो सेकंड स्टेज का संन्यास आता है कि वो कर्म संन्यास रहता है, कर्म को भी त्याग सकता है, वो कर्म भी त्याग देता है। तो सन्यासी फिर सेकंड स्टेज पे जाता है। तो इस तरह से धीरे 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 असक्त बुद्धि, आसक्त अनासक्त बुद्धि ये उसको अनुकूल कर सकता है। लेकिन ये योगा लेटर में पहले हमने सीख चुके, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भक्ति योग को बल देकर के सन्यास को भक्ति योग के माध्यम से योगारूढ़ अवस्था जो है उसको समझाया। योगारूढ़ और दूसरा कौन सा है, योगा रुरुक्षु, है ना, एक योग रुरुक्षु और एक योगारूढ़। योगारूढ़ किसे कहते हैं, ये योग में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनको, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद योगारूढ़ अवस्था की बात करते हैं। हाँ, अभी तीन श्लोक एक साथ है कि वो ज्ञान योगी, जो आगे बढ़ा हुआ ज्ञान योगी है वो किस तरह के उसका वर्णन होता है, वो दैट इज गिवन इन द नेक्स्ट थ्री श्लोकस।
जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग का द्वेष से युक्त मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन वाणी मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्ति मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है।
Yes. तो यहाँ पर भगवान ने आगे वाले पीछे वाले जो श्लोक था 50, उसमें भगवान बताए थे कि मैं अर्जुन तो मैं बताता हूँ कि सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है जो व्यक्ति सिद्धावस्था ब्रह्म को, उसका वर्णन उसका कैसा वर्णन होता है, वो उसका लक्षण यहाँ पर सारे बताए हुए हैं। इसमें तात्पर्य अगर हम पढ़े, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्वगुण में अधिष्ठित कर लेता है, इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, वह इंद्रचित्त के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभाव एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर और मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं समझता, नहीं वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल और बलवान बनाने की चेष्टा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता, भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उससे बहुत संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, नहीं वह इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था है। ये ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था, इसको ब्रह्मभूत अवस्था बोली गई है। ब्रह्मभूत अवस्था ये शरीर की भावना से पर होता है, ये अवस्था उसमें कैसा होता है कि ज्ञान योग के माध्यम से ये सारी क्वालिटीज़ को अनुकूल किया जाता है। जो अभी हमने तात्पर्य में जो कुछ पढ़ा, ये बहुत सारे गुण, एक्चुअली ये सारे गुण भक्त में होते हैं क्योंकि वो ब्रह्मभूत के स्तर से ऊपर होता है। ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ होता है वो मुक्तात्मा होता है, आगे वाला जो श्लोक आएगा वो यही है ब्रह्मभूत वाला, लेकिन वो मुक्त अवस्था में होता है। तो मुक्त अवस्था के लक्षण बताए थे, जैसे कि वो प्रसन्न नहीं हो जाता, इंद्र तृप्ति प्राप्त नहीं, पर गुस्सा नहीं करता, शरीर को स्थूल नहीं बनाता बलवान बनाने के लिए, ये सब इज आर ऑल बॉडीली कॉन्सेप्ट, इज नॉट एट ऑल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। तो वो शांत रहता है हर एक परिस्थिति में, जिस तरह से समुंदर शांत रहता है, समुंदर जिस तरह से बिल्कुल शांत रहता है, उसको कुछ भी हो जाए वो विह्वल नहीं होता, उसमें आप कितना भी नदियाँ आ जाए, कितना पानी, कितना बाल्टी भर के पानी डालो, कुछ वो अपनी सीमा नहीं होता, वहीं पर रहता है वो हमेशा शांत रहता है। उसी तरह से ब्रह्मभूत अवस्था में जो रहता है वो कभी भी विक्षिप्त नहीं होता, वो स्थिर रहता है, ये सन्यासी का लक्षण है। तो अभी हमने संक्षेप में ब्रह्मभूत अवस्था तक हम पहुँचे हैं। मैं सोचता हूँ कि आगे के श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक अ ब्रेक, एक बज गया, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और 2:25 to 2:25 इशू भी है और 4:30 बजे हम शुरू करेंगे ताकि 4:30 बजे हम इसको फिनिश कर पाएँ।